की आयु से अध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आराम कर देना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है? दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, कितने लोगों के पास है? हमारे देश की आबादी लगभग क्या 80% हिंदू है, पर कितने हिंदू इसमें विश्वास भी करते हैं? बहुत कम। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो इसी विषय के ऊपर प्रहलाद महाराज इन श्लोकों में हमें उपदेश दे रहे हैं। जैसे श्लोक नंबर 3 में उन्होंने उपदेश दिया, जैसे कि दुख आता है बिना मांगे, सुख भी आएगा बिना मांगे, पर केवल उतना ही आएगा जितना आपका कोटा है, वैसे एक बूंद नहीं। प्रहलाद महाराज कह चुके हैं कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए इन सब श्लोकों का मूल उद्देश्य एक ही है। क्या है वो? परम भगवान के शरणागत होना और हमें बेकार के कार्यों में समय नहीं बिताना चाहिए। पर इसी विषय को बार बार अलग अलग तरीकों से 18,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि शुरू से अंत तक भगवान भगवता में एक ही संदेश है, वो है कि हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। पर क्योंकि हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है, इसलिए हमें रोज सुनना चाहिए ये भगवतों का संदेश। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये जो हम प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और भौतिक सुख के लिए आर्थिक लाभ के द्वारा, इसका कुछ फायदा नहीं। आज अगर आप देखो सारे विश्व में, चाहे भारत के गांव में जाओ या अमेरिका के बड़े शहर में जाओ, सब व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं किसके लिए? धन के लिए। और इन्हें धन क्यों चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहते हैं? नहीं, धन चाहिए क्योंकि धन आज के वातावरण में इंद्रिय तृप्ति का साधन बन गया है। अगर आपको इंद्रिय तृप्ति मुफ्त में प्राप्त होती तो धन की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अगर आपको ताजी हवा भी चाहिए, जो इतना सरल नहीं है भारत में, आपको कोई हिल स्टेशन में जाना है उसके लिए भी धन चाहिए, है कि नहीं? तो हर चीज के लिए, आपको अच्छा पानी पीना है उसके लिए भी धन चाहिए, तो हर चीज के लिए धन चाहिए। तो आप कहोगे क्या आप हरे कृष्ण वाले धन के पीछे नहीं भागते? तो हम भी भाग रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो, अंतर क्या है? अंतर है या नहीं है? महान अंतर है। अगर हरे कृष्ण वाले धन के पीछे भाग रहे हैं तो वो चाहते हैं इस धन से भगवान का गुणगान हो, भगवान का मंदिर बने, भगवान का प्रचार बढ़े। भौतिकवादी व्यक्ति अगर धन के इच्छुक हैं, वो अक्सर इच्छुक हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब शास्त्रों में बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का शत्रु है। जैसे भौतिक समाज में हम कहते हैं ये मेरा शत्रु है, तो आपके आध्यात्मिक जीवन का शत्रु कौन है? इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि आप इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते भौतिक कार्यों द्वारा। भगवत में एक कथा पढ़ते हो महाराज ययाति की, जिसके पास 10,000 सालों के लिए पूरी सुविधा थी, पूरी 10,000 सालों के पश्चात उन्होंने कहा मैं तो एक लस्टी गोट बकरे जैसा था। उन्होंने इतना प्रयास किया पर इंद्रियों को वो संतुष्ट नहीं कर पाया। आप एक कथा पढ़ते हो भागवत में, एक सुबारी मुनि की। सुबारी मुनि आजकल के जमाने में सब मैरिन होते हैं ना, सब मैरिन जानते हो, पानी के नीचे रहता है, उसमें आदमी भी रह सकते हैं। तो आज जो कार्य सब मैरिन कर रहे हैं वो हमारे योगी करते थे पहले। तो सुबारी मुनि आज के सब मैरिन से ज्यादा तेज था। पानी के नीचे बहुत गहराई पर नीचे भगवान का चिंतन कर रहा था, और पानी के नीचे चिंतन कर रहा था, दाढ़ी उग गई थी, बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े भाव। कोई आईना थोड़ी है पानी के नीचे देखने को, आप कितना खूबसूरत दिख रहे हो। तो सुबारी मुनि ने देखा दो मछलियों को भोग विलास करते हुए, और उसका मन एकदम विचलित हो गया। वो सोचने लगा शायद इस कार्य में आनंद है, भोग विलास में। तो उसने अपना जो चिंतन था जल के नीचे छोड़ दिया, बाहर निकल आया और उस स्थान के राजा के पास पहुंचा। राजा की 50 बेटियां थी। तो राजा से कहा मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। तो राजा ने देखा जंगली जैसा व्यक्ति दिख रहा था, लंबे बाल, लंबे नाखून, बिल्कुल बदसूरत। तो राजा ने बड़े राजनीतिक रूप से कहा मैं तो अपनी बेटियों को जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता, पर अगर वो करना चाहे तो कर ले। तो सारे बेटियों ने देखा सबने दरवाजा बंद कर दिया। तो सुबारी मुनि समझ गया क्यों इन बेटियों ने उन्हें ठुकरा दिया है, कोई भी तैयार नहीं थी उसे विवाह करने का। तो यो उनके पास योगिक सिद्धियां थी, तो योगिक सिद्धियों से वह एक बहुत खूबसूरत नौजवान युवक बन गए। और जब राजा की 50 बेटियों ने देखा इस खूबसूरत नौजवान युवक को, सबने कहा मैंने इसे पहले देखा था तो ये मेरा पति बनेगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले देखा था, मेरा पति बनेगा। तो अंत में जब सुबारी मुनि ने देखा 50 बहनें झगड़ा कर रही हैं कौन उनसे विवाह करेगा, उन्होंने 50 से विवाह कर लिया। योगी थे, इनके पास सिद्धियां थी। पर सुबारी मुनि ने देखा थोड़ी देर बाद कि वो उनकी इंद्रियां जब भी तृप्त नहीं हो सकती। फिर सुबारी मुनि घरेलू आश्रम छोड़कर वन में गए, जहां उन्होंने पत्नियों के साथ भगवान का चिंतन करना आरंभ किया। तो इस प्रकार भागवत में अनेक लीलाएं हैं जिनके द्वारा हमें एक संदेश दिया जा रहा है। वो संदेश क्या है कि भौतिक समाज में चाहे आप विश्व में प्रयास किया जा रहा है, किसके पीछे? आर्थिक धर्म। कई बार जब आप भक्ति में भी जुड़ते हो तो लोग पूछते हैं मंदिर जाते हो कोई धन मिल रहा है वहां, कोई ठेका मिल रहा है, पूछते हैं लोग। क्योंकि लोगों का भाव क्या है, वहां ही जाओ जहां आर्थिक धन मिले, जहां धन नहीं मिले वहां मत जाओ। अगर आप अपने घर वालों को कहो हम तो हरे कृष्ण में साधु बनना चाहते हैं, साधु इस उम्र में, ये तो पैसे कमाने की उम्र है। तो अगर आप कहो साधु बनेंगे तो साथ में 50,000 महीने तनख्वाह मिलेगी, फिर क्या कहेंगे? कहेंगे ठीक है ठीक है। तो आज जमाना किस पर चल रहा है? भौतिक धन के ऊपर। तो भौतिक धन क्यों चाहिए लोगों को? इंद्रिया तृप्त गई। तो शास्त्र में ये निर्णय कर दिया है कि आप चाहे कितनी भी सुविधा प्राप्त करो, आप भौतिक धन द्वारा संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। चैतन्य चैतन्यमृत में आप एक कथा पढ़ते हो कि एक व्यापारी था, बहुत धनी व्यक्ति, बहुत धनी, पर साथ में वो बहुत कंजूस था। एक पैसा भी ना पत्नी को देता था, ना रिश्तेदारों को, ना बच्चों को। सारा पैसा व्यापार करता था, व्यापार में उसकी आमदन बढ़ते जा रही थी, तो सर पैसा जोड़ते जाता था। चैतन्य चैतन्यमृत में कहा गया है कि जब आप धन कमाते हो, आपके कई दुश्मन बन जाते हैं, है कि नहीं? एक दुश्मन तो आपके हैं सरकार। सरकार कहती है हमारी कृपा से तुम धन कमा रहे हो, टैक्स भरो, है ना? हमारा अच्छा राज्य है इसलिए, चोरों का राज्य है पर इसलिए टैक्स भरो। फिर जो चोर हैं, डाकू हैं, वो किसको निशाना बनाते हैं? गरीबों को। गरीब व्यक्ति आप देखते हो कुटिया में, झोपड़पट्टी में, दरवाजा खोल के भी सो जाएगा। पर जो धनी व्यक्ति है उसे ऊंची दीवार बनानी पड़ती है, विदेशी कुत्ते रखने पड़ते हैं, नेपाली चौकीदार रखने पड़ते हैं, है ना? हम एक सज्जन को मिलने गए थे कोई एक महीने पहले सूरदास के साथ, तो उस सज्जन के घर में, धनी व्यक्ति था, उस सज्जन के घर में ऊपर तो चौकीदार थे पर नीचे भी बिल्डिंग के चार विदेशी चौकीदार थे। तो धनी व्यक्तियों को कितनी चिंता होती है। तो चैतन्य चैतन्यमृत में कहा गया है जब आपके पास बहुत धन हो तो सरकार दुश्मन बन जाती है, चोर तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं हमारी कृपा से धनी बने हो, हमें कोई देते ही नहीं। तो ये जो बिजनेसमैन था अवंती ब्राह्मण, बहुत धनी था पर किसी को भी एक पैसा नहीं देता था। तो समय के साथ सब उसके दुश्मन बन गए, पत्नी दुश्मन बन गई, रिश्तेदार दुश्मन बन गए, बच्चे भी दुश्मन बन गए। और ऐसा हुआ कि सारा धन खो गया। जैसे कई बार आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हो तो धन खो जाता है। हमारे एक विदेश में, एक अफ्रीका के देश में, हमारे एक संस्था के अच्छे मित्र हैं जिनका $20 million डूब गया, बैंक फेल हो गया। तो किसी कारण इस धनी व्यक्ति का धन सब खो गया। तो जब पहले धन खोया तो बड़ा शोक में था, दुख में था, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन, मेरा धन। पर फिर उस शोक से वो बदल गया त्याग में, और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान मुकुंदा के शरणागत होते हुए वो धनी व्यक्ति अवंती ब्राह्मण अलग अलग स्थानों में जाने लगा भगवान का गुणगान करते हुए। कईयों ने कहा धनी व्यक्ति था, धन खो गया तो साधु बन गया, जब भी वो सह लेता था। तो धन जो है, लक्ष्मी जैसे कहते हैं साधारण भाषा में, हम क्या कहते हैं? हम लोग भारत में दिवाली के समय लक्ष्मी पूजा करें ना, तो लक्ष्मी नारायण पूजा नहीं करते। लक्ष्मी का कर्तव्य है कि नारायण की सेवा में रहे। जब आप लक्ष्मी को अपने जेब में डालोगे तो उसका सारा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि जो धन कमाने में जो कर्म होता है वो सब आपको भरना पड़ेगा, ये हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि धन कमा लो चापलूसी करके, जेब काट के, बेईमानी करके, झूठ बोल के, इसका कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं, सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, तारे, तेतिस, ये सब साक्षी बनते हैं। तो धन जब कमाया जाता है और भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया जाता उसका बहुत भयंकर परिणाम है। हम धन को अगर धर्म के नाम पर चुराएं तो उसका भी क्या परिणाम है? नरक का द्वार। तो जब हम धन कमाते हैं और इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो उसका परिणाम है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं प्रयास करना इंद्रिय तृप्ति के या भौतिक सुख के लिए आध्यात्मिक मार्ग द्वारा ये व्यस्त है। श्रम एव ही केवलम, जो कार्य के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता वो श्रम एव ही केवलम, मतलब बेकार का कार्य है। आप देखते हो सड़कों में मोटरें जा रही हैं, भाग रही हैं, लोग भाग रहे हैं, पर उनमें से जो भाग रहे हैं कितनों का भाव है भगवान की सेवा? तुझ, बहुत तुझ का। तो प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रहलाद महाराज आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस प्रकार के कार्य में समय इस प्रकार के कार्य में समय और शक्ति सब बेकार में जाएगी। तो आप पूछोगे फिर हमें क्या करना चाहिए? आप कहोगे धन का उपयोग नहीं करना चाहिए गलत कामों के लिए, तो क्या करना चाहिए? धन कमाना तो कमाओ पर कहाँ इस्तेमाल करो? भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, एक 100 रुपए का नोट है सड़क में, 1000 रुपए का, हाँ। तो उसके क्या उपाय हैं? एक व्यक्ति तो कहेगा हा कोई देख रहा नहीं है मुझे नोट जेब में डालने दो। दूसरा व्यक्ति कहेगा ये मेरा नोट नहीं है मैं क्यों उठाऊं, जिसका है वो आकर ले लेगा। तीसरा कहेगा ओ ये नोट मुझे लेने दो और ढूंढने दो किसका है उसको मैं वापस करूंगा। तो इन तीनों में कौन है सिद्ध? हाँ, तीसरा वाला। तो इसी प्रकार वैष्णव भक्तों का भाव है ये सारी संपत्ति परम भगवान द्वारा आ रही है, इसलिए इसको उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी भारत से निकले थे 40 रुपए के साथ, पर भगवान ने जैसे उन्हें सुविधा दी प्रभुपाद जी ने क्या किया? इस सुविधा के द्वारा ग्रंथों को प्रकाशित किया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। तो भक्त भी ये नहीं कि हम कहते हैं हम तो धन को छुएंगे नहीं। मायावादी कई लोग क्या कहते हैं? सब मिथ्या है, धन मिथ्या है, ये मिथ्या, ये मिथ्या है। हमारा वैष्णव का सिद्धांत क्या है? ये मिथ्या नहीं है, मिथ्या बन जाता है जब आप इसका दुरुपयोग करो। जब आप इसका सदुपयोग करोगे तो ये है उसका ठीक उपयोग। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं जो कार्य आप इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हो वो केवल बेकार का कार्य है, उसका कुछ लाभ नहीं। आगे वो क्या कहते हैं? आगे कहते हैं हमारा हर प्रयास रहना चाहिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यही भाव प्रहलाद महाराज लगभग हर श्लोक में दे रहे हैं, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, मुकुंदा चरणम भुजम, मुकुंदा जो कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दे सकते हैं, हमें उनके क्या होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज हम सबको बार बार याद दिला रहे हैं, आप लोग मैराथन कर रहे हो, अगर आपके घर में सातवां स्कंध है तो एक श्लोक इस अध्याय का रोज पढ़ो बाहर जाने से पहले, और आप देखोगे कि इसका कितना प्रभाव है। तो भागवतम का जो संदेश है सबसे उत्तम संदेश है, और मुकुंदा चरणम भुजम, मुकुंदा के शरणागत कैसे हो गए, क्या ये शिक्षा भी प्रहलाद महाराज ने दी है। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि आज तुमने अपने पाठशाला में क्या सीखा, तुम्हारे अध्यापकों ने इतना सिखाया, इन सब विषयों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा विषय है, पिता ने उम्मीद की थी बेटा कहेगा आप हो सबसे उत्तम व्यक्ति, और बेटे ने क्या कहा, नवदा भक्ति का क्या है, जो कि उन्होंने नारद मुनि द्वारा प्राप्त किया था। और नवदा भक्ति का ज्ञान क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंद्यम दशम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है श्रवणम और कीर्तनम के साथ, चाहे आप इस देश के वासी हो या विदेश के, हम सबका अनुभव है जितना ध्यान देंगे हम शरणम कीर्तनम को, उतनी तेजी के साथ चेत और दर्पण मार्जनम, उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल जुड़ेगी। हम सब में यह भावना है, क्या धन कमाए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का क्या अर्थ, जिसकी रुचि हो धन और नरम बिस्तर में। तो ये दो कमजोरियां सब में है, धन कमाए, कई बार लोग भक्ति के मार्ग में जुड़ जाते हैं धन कमाने के लिए, पर ये भूल जाते हैं इसका क्या परिणाम होगा। तो धन कमाए और स्त्रियों की संगत, तो इसे बचने के लिए ध्यान पूर्वक जाप, शास्त्रों का अध्ययन, साधु संग, भगवान के आचार्य बिना की उपासना, ये सारे कार्य अवश्य है। तो यह ज्ञान जो प्रहलाद महाराज दे रहे हैं, वो ज्ञान हम केवल अपने तक ही रखें या दूसरों को भी दें, दूसरों को भी दें, अपने तक नहीं रखें तो दूसरों को कैसे दोगे, प्रचार के माध्यम से। क्या कार्य है कि हमारे शास्त्रों में भगवान बार बार प्रचार के कार्य पर बल दे रहे हैं, भगवान ने गीता में क्या कहा, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है, उसी ज्यादा प्रिय लगे हुआ है ना होगा। साहब ऐसे कौन कौन भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, सब सब, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट चाहिए या प्रयास करोगे, प्रयास करोगे। तो प्रयास करना मतलब प्रचार के कार्य में जुड़ना। प्रभुपाद जी बार बार शास्त्र में कहते हैं परा दुखा दुखी, वैष्णव जो है जो वो देखता है भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं भौतिक सुख द्वारा अस्थि सुख प्राप्त करने के लिए, उन्हें पता ये असंभव है, तो वो क्या करता है, प्रयास करता है उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए। देवहूति माता ने अपने बेटे कपिला देव से पूछा, उन्हें पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है, उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो बेटे ने कहा आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, इसके उत्तर से पूरे समाज का लाभ होगा। जब परीक्षित महाराज ने पूछा ये बताइए जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न थे इस प्रश्न से, उन्होंने कहा इसके उत्तर से पूरे समाज का लाभ होगा। तो आज जैसे कि भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, अगर इस संसार में किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? इस दिव्य ज्ञान की कमी है। चेतन चैतन्य में आप कथा पढ़ते हो वासुदेव दत्ता का। परसों मैंने जो आपको कथा सुनाई वो वासुदेव विप्र की थी। तो वासुदेव विप्र वासुदेव देवदत्ता अलग अलग भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो वासुदेव दत्ता बड़े अच्छे गायक थे, बड़े दयालु भक्त थे। तो एक दिन वो महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु से कहने लगे, जब मैं देखता हूं इन वज जीवों को तो मेरा हृदय शोक में पहुंचता है। तो मेरी ये इच्छा है कि आप सबका परिणाम मुझे दे दो, सबका पापों का परिणाम मुझे दे दो और आप सबका उद्धार कर दो। क्या भाव था? सबका पापों का परिणाम मैं भुगत लूंगा, आप सबको भगवान के धाम ले जाओ। तो जब महाप्रभु ने ये पूछ सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रहलाद वासुदेव दत्ता को कई बार प्रहलाद महाराज का अवतार माना जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज के हृदय में सदा ये भाव था कैसे वज जीवों का उद्धार करे, उसी प्रकार वासुदेव दत्ता का भी था। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जब सुना कि वासुदेव दत्ता का यह भाव है, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वासुदेव अगर तेरी ये इच्छा है तो भगवान अवश्य ही पूरा करेंगे। तो ये था वासुदेव दत्ता का भाव। एक नौवे स्कंद में आप महाराज रंती देवा की कथा पढ़ते हो। महाराज रंती देवा राजा थे, पर साथ में बड़े ऊंचे कोटि के भक्त। प्राचीन समय में जो राजा थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। तो उन्होंने 48 दिनों के लिए व्रत रखा था। वो अपना वो व्रत तोड़ने ही वाले थे थोड़े से प्रसाद के साथ जो दूध और जल से बना था, कि एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा मैं भूखा हूं, तो जो थोड़ा सा प्रसाद था उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। फिर वो खाने ही लगे थे, पत्नी के साथ व्रत तोड़ रहे थे, 48 दिन का व्रत था। तो एक और चंडाला आ गया, उसने कहा मैं भी भूखा हूं दो कुछ खाने के लिए। फिर खाने ही लगे थे, एक और आ गया शूद्रा। फिर थोड़ा सा जल बचा था, एक प्यासा व्यक्ति आ गया, कहने लगा मैं प्यासा हूं मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए। सबको दे दिया। और फिर उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्तुति की, काम है हम गतम ईश्वर पड़ा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब जीवों का परिणाम मुझे दो, पर आप सबको सुखी बनाओ। तो ये बड़ा ऊंचा विचार है जो हमारे पास नहीं होगा, पर हमें ये जानना चाहिए कि वैष्णव सिद्धांत में सबसे ऊंचा लक्षण क्या है। तो ये जो प्रचार की सेवा जिस पर हमारे आचार्यों ने बल दिया, जिस पर भगवान ने बल दिया, जिस पर प्रभुपाद ने बल दिया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पतितों का उद्धार। और हम भक्त जो इस सेवा में जुड़ते हैं उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रचार के अनेक साधन हैं। कई बार हमारे मन में ये आता है, हम तो हर साल मैराथन करते हैं, कहाँ जाएंगे? आपका बॉम्बे शहर कितना बड़ा शहर है, बॉम्बे के बाद ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही है या घटते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो प्रचार के अनेक साधन हैं, हम सबको इस सेवा में जुड़ना चाहिए। कई बार बहाना ढूंढते हैं प्रचार में जा रहे थे, बहाना ढूंढोगे तो आपका ही नुकसान है, कृपा नहीं मिलेगी। प्रचार करोगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर आपको लगता है हमारा उधर कृपा का बहुत कोटा है, फिर ठीक है प्रचार मत करो। अगर आपको लगता है नहीं, हम प्रचार के भूखे, कृपा के भूखे हैं, हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान की इच्छा क्या है कि हम सब भक्ति में जुड़े। प्रभुपाद जी ने खुद इस सेवा पर बल दिया और प्रभुपाद जी खुद अमेरिका जाने से पहले ग्रंथों को प्रकाशित करके अलग अलग जगह में जाते थे प्रचार करने के लिए। एक समय प्रभुपाद जी दिल्ली में अपनी बैंक टू क्वार्टर पत्रिका को बांट रहे थे और बांटते बांटते उन्हें सनस्ट्रोक आ गया, बेहोश हो गए। पर जैसे ही होश में आए तुरंत उन्होंने शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में हमें यह उदाहरण दिया कि ये ग्रंथों की वितरण की सेवा कितनी आवश्यक है। जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को कहा घर घर जाके प्रचार करो और शिक्षा दो, करो कृष्णा शिक्षा, यह है भगवद गीता की शिक्षा। तो आज अगर किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है, और भगवद गीता के माध्यम से अज्ञानता दूर हो सकती है। कृष्णा सूर्य सभा माया हाया अंधिकारा, यहां कृष्णता ही नहीं माया अंधिकारा। जहां कृष्णा है वहां माया नहीं रहेगी, जिस प्रकार जहां सूर्य है अंधेरापन नहीं रहता। तो हम सबको बड़े उत्साह के साथ इस सेवा में जुड़ना चाहिए। इन ग्रंथों के माध्यम से लाखों लोगों का उद्धार हुआ है, होते जाएगा। इन ग्रंथों के अध्ययन से लाखों जीवन भगवान के शरणागत बन गए हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा का क्या अर्थ है? परम भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? उपदेश शिक्षा, किसके सुधार के लिए? हमारे सुधार के लिए। और भगवान हम सबको निमित्त मात्र बना रहे हैं। ध्यान से देखा जाए भगवान को ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है, पर भगवान हम सबको मौका दे रहे हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। भगवान हमें निमित्त मात्र बना रहे हैं। और इन ग्रंथों के अध्ययन से, परसों मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे कि इस प्रकार इन ग्रंथों के अध्ययन से लोगों का जीवन सुधरा है। और ये ग्रंथ जो है इनमें है दिव्य ज्ञान। एक कथा सुनाऊंगा। कनाडा में एक भक्त हमारे जो एक समय कनाडा की नेवी में थे, क्या कोई दुर्घटना बीतनी तो बीमार, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, तो बड़े उदास थे। तो एक दिन वो लाइब्रेरी में गए, ओटावा कनाडा की राजधानी है, लाइब्रेरी में आने किताबों को पढ़ने लगे। फिर उन्होंने देखा एक भगवद गीता थी वहां फ्रेंच भाषा में, तो रोज जाकर लाइब्रेरी में पढ़ते थे। पर उन्हें लगा कि ये तो बहुत तकलीफ है, उन्होंने गीता को चुरा कर कोट के अंदर घर ले आए। उनको इतना आनंद आ रहा था गीता पढ़ने में। फिर वो भक्तों से मिले, फिर उन्हें पता लगा कि यहाँ भक्त हैं, तो फिर उन्होंने कई गीता खरीद कर लाइब्रेरी में डाल दी और भगवान के भक्त बन गए और दिन रात अभी गीता को बांटते हैं। तो इस प्रकार हजारों हजारों उदाहरण हैं कि किस प्रकार गीता ने लोगों को आत्महत्या से रोका, किस प्रकार दुख से सुखी बना दिया। और अगर आज किसी चीज की कमी है, इसे भी ज्ञान की कमी है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, उत्साहित होकर प्रहलाद महाराज की शिक्षा, गीता की शिक्षा और प्रहलाद महाराज की शिक्षा में कोई अंतर नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। गीता का निर्णय है भक्ति योग और भगवतम का निर्णय है भक्ति योग। भगवतम और गीता में कोई अंतर नहीं। तो गीता का जो उपदेश है वो ये है, सर्वधर्मा परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। आप सबसे निवेदन है आपके मंदिर की योजना है 2.5 लाख गीता बांटने की ये महीने में, और आप सबके सहयोग से अवश्य ही वो कर पाएंगे। सब सहयोग दोगे मैराथन की समाप्ति तक? सब ओके। हरे कृष्णा। ओके, कोई क्वेश्चन? अभी समाप्त करेंगे क्लास, देर हो गई। We stop? Yeah, we went over time. Hare Krishna. Sab ke liye yagya ki. Aur aapke Hare Krishna land mein Prabhupada ji ne anek granthon ko anuvad kiya. Chaitanya Charitamrita ko samap pe kiya tha Hare Krishna land mein. So aap us sthan mein ho jahan ki Prabhupada ji ne itna sangharsh kiya ise prapt karne ke liye. जिस स्थान में प्रभा जी ने बैठकर अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया, तो आपका खास कृपा है कि आप लोगों को इस स्थान में सेवा का मौका मिल रहा है। हरे कृष्णा।